Hare Krishna. महाभारत की इन कक्षाओं में अब तक चर्चा कर चुके हैं कि सभी पांडव अर्जुन के विरह में बड़े दुखी थे। लोमश ऋषि स्वर्ग से आए, सूचना दी, चिंता नहीं करो, अर्जुन बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख रहा है, बहुत जल्द वापस आएगा और उतना समय आप लोग तीर्थ यात्रा में बिताएं। तो फिर अलग अलग तीर्थों की यात्रा करने लगे। पिछली बार उनकी यात्रा के कुछ स्थानों को हमने सुना, किन किन स्थानों पर पांडव गए। अब आगे कुछ स्थानों का वर्णन करते हुए फिर हम लोग बद्रिकाश्रम की ओर जाएंगे और फिर बड़ी जल्दी वो समय आएगा जब उन्हें अज्ञातवास का पालन करना है। तो अब पांडव आगे निकले महेंद्र पर्वत की ओर, जहां पर परशुराम जी विराजमान हैं। युधिष्ठिर की इच्छा थी परशुराम जी के दर्शन करने की। महेंद्र पर्वत पर आए, बहुत से ऋषि मुनियों से, तपस्वियों से मिले। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, क्या परशुराम जी के दर्शन हो सकते हैं? तो उनके सेवक ने बतलाया कि हाँ, कल सुबह वो दर्शन देंगे सभी तपस्वियों को, और आपसे तो वो विशेष मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आप आएंगे। तो उस समय युधिष्ठिर ने प्रश्न किया परशुराम जी के विषय में, कैसे परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से सारे क्षत्रियों को समाप्त किया, कृपया इस कथा को बताइए। तो संक्षेप में इस कथा को कहा गया, इतिहास परशुराम जी का, कि कैसे गाधी महाराज, जिनकी पुत्री थी सत्यवती, सत्यवती का विवाह हुआ ऋचक ऋषि से, और सत्यवती को वरदान देने के लिए भृगु मुनि आए, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। सत्यवती की माता अर्थात गाधी महाराज की पत्नी, वो भी एक पुत्र चाहती थी, क्योंकि कोई संतान नहीं थी, और तो दोनों के लिए अलग अलग फल दिए गए। एक सत्यवती के लिए, एक उनकी माता के लिए। उनकी माता ने सोचा कि जो सत्यवती को दिया होगा वो श्रेष्ठ होगा, इसीलिए अदल बदल कर दिया। जो उनकी माता के लिए था वो सत्यवती को मिला, और जो सत्यवती के लिए था वो उनकी माता को मिला। जब ऋचक मुनि को ये पता चला तो उन्होंने कहा सत्यवती से कि तुम्हारा पुत्र जो होगा वो होगा तो ब्राह्मण, लेकिन कार्य क्षत्रियों के करेगा और बड़ा भयंकर क्षत्रिय होगा, और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा हालांकि वो क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय परिवार में जन्म लेगा, लेकिन कार्य ब्राह्मणों के करेगा, कुल का नाम करेगा, बहुत बड़ा ब्रह्म ऋषि बनेगा। तो सत्यवती को बहुत दुख हुआ। सत्यवती ने प्रार्थना की कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र इतना भयंकर क्षत्रिय बने, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, एक काम करते हैं, आपका पुत्र नहीं, आपके पुत्र का पुत्र क्षत्रिय होगा। तो सत्यवती ने कहा ठीक है। तो ऋचक मुनि और सत्यवती के पुत्र हुए जमदाग्नि ऋषि, बहुत महान ऋषि, और इन्होंने विवाह किया रेणुका देवी से। जमदाग्नि का विवाह हुआ, और फिर जमदाग्नि और रेणुका देवी से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके एक पुत्र नहीं थे केवल परशुराम जी, उनके 5 पुत्र थे। तो 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटे थे परशुराम जी। बाकी सब बड़े थे उनसे, चारों भाई बड़े थे। परशुराम जी की लीलाओं को सुनाया गया, जिनमें से एक लीला थी कि जब उनकी माता रेणुका देवी के मन में थोड़ा बहुत गलत विचार आ गया, जमदाग्नि ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उस समय उनके पांचों पुत्र बाहर गए हुए थे, एक एक करके एक पुत्र आया, सबसे बड़ा आया, उससे कहा कि तुम्हारी माँ के मन में थोड़ा बहुत विकार आ गया है, गलत विचार आया है, इसकी हत्या कर दो। पुत्र ने सुना लेकिन कर नहीं पाया मां की हत्या। दूसरा आया, उसको कहा जमदाग्नि ऋषि ने, हत्या करो इनकी, कर नहीं पाए। तीसरा, चौथा, कोई नहीं किया, क्रोध में आ गए, उनको पत्थर बना दिया जमदाग्नि ऋषि ने। पत्थर अर्थात वो स्तब्ध रह गए, कुछ कर नहीं पाए। परशुराम जी आए, जमदाग्नि ऋषि ने यही उनसे भी कहा, तुम्हारी मां को हत्या कर दो। परशुराम जी ने फरसा लिया और मार डाला मां को, कोई रुके नहीं, कोई चिंता नहीं की, विचार नहीं किया। और जब मार दिया, वैसे एक स्थान पर वर्णन है कि उन्होंने अपने भाइयों को भी मार दिया था। जमदाग्नि ऋषि ने कहा था कि ये तुम्हारे भाई, इनको मैंने आदेश दिए, सुन नहीं रहे हैं, इनको भी मार दो, तो उनको भी मार दिया था, माता को भी मार दिया। जमदाग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, एक तो लायक पुत्र निकला। तो उन्होंने उससे कहा कि मांगो, क्या मांगना है? परशुराम से कहा, बहुत अच्छा, तुमने मेरी आदेश का पालन किया, क्या चाहिए? परशुराम ने कहा, एक ही वरदान चाहिए, मेरी माता और भाइयों को पुनर्जीवित कर दीजिए और वो ये भूल जाने चाहिए कि मैंने उन्हें मारा है। और उस समय उन्होंने जमदाग्नि ऋषि से यह भी मांगा था कि मैं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनूं इस पृथ्वी पर। तो जमदाग्नि ऋषि ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की, उनकी माता पुनः जीवित हो गई, भाई पुनः जीवित हो गए, और वो भूल गए कि परशुराम जी ने मारा था, क्योंकि अगर याद रहता तो फिर क्या क्या होता आप जानते हैं। यहां हम कई बार कहते हैं कि मंदिर में अंदर आने से पहले अपने मोबाइल बंद किया कीजिए, जिस भी किसी के मोबाइल ऑन है कृपया बंद कीजिए, यहाँ एक ही मोबाइल चलता है कृष्ण का। तो परशुराम जी को ये वरदान मिल गया। एक और लीला परशुराम जी की सुनी युधिष्ठिर महाराज ने, कि कैसे परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन का वध किया था। कार्तवीर अर्जुन जो सहस्त्र बाहु थे, हजारों हाथ थे उनके, इतना शक्तिशाली थे कार्तवीर अर्जुन कि रावण को उन्होंने वश में कर लिया था, बंदी बना लिया था। एक ही व्यक्ति था उस समय जिसने रावण को बंदी बनाया था। दरअसल ये प्रश्न रामचंद्र जी ने, जब उनका राज्याभिषेक हो गया, सारे ऋषि मुनि बैठे थे, एक बार सभा में रामचंद्र जी ने पूछा कि अरे ये रावण इतना शक्तिशाली हो गया, क्या कोई रोकने वाला नहीं था उसे? तो उस समय कथा सुनाई गई कि एक व्यक्ति ने रोका, बहुत शक्तिशाली थे वैसे वाली भी शक्तिशाली था, लेकिन वाली से मित्रता कर ली थी रावण ने, इसीलिए वाली ने बंदी नहीं बनाया। लेकिन कार्तवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि एक समय रावण का कार्य था कि हर राज्य में जाता था, चुनौती देता था, हे तुम्हारा राजा कहाँ है, बुलाओ उसको, कहो मुझसे युद्ध करे, नहीं तो मेरी दासत्व को स्वीकार करे। तो कोई युद्ध करते थे, कोई नहीं करते थे। तो ऐसे ही एक समय कार्तवीर अर्जुन के राज्य में आया, महिष्मति नाम की उसकी नगरी थी, तो उसमें आया, मंत्री वगैरह थे, उसे पुकारा, तो मंत्री ने आकर कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा मैं रावण हूँ, त्रिलोकेश्वर, तुम्हारे राजा से कहो मुझसे युद्ध करे, नहीं तो मेरा दासत्व स्वीकार करे, मेरा दास बने। तो उसके मंत्री भी इतने शक्तिशाली थे, मंत्रियों ने कहा थोड़े समय बाद में आना, रावण को कहा थोड़े समय बाद में आना, अभी हमारे राजा आराम कर रहे हैं, वो अपना खेल कर रहे हैं। उस समय उनके राजा अपनी रानियों के साथ नदी में क्रीड़ा करने गए हुए थे। देखिए जब व्यक्ति, जब ऊपर राजा शक्तिशाली होता है तो प्रजा भी शक्तिशाली हो जाती है। तो उनको भी चिंता नहीं हुई कि रावण आया है, घबराए नहीं, उन्होंने कहा थोड़े समय बाद में आइएगा, आपसे युद्ध करेंगे हमारे राजा। तो रावण चले गए नदी के किनारे, शिव जी का शिवलिंग स्थापित किया उन्होंने शिव जी को, और पूजा करने लगे। रावण के पास सोने का शिवलिंग था जिसकी वो हमेशा पूजा करते थे। पूजा करने लगे। अब वहां से कुछ दूर पर कार्तवीर्य अर्जुन खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे नदी में अपनी पत्नियों के साथ। तो अपनी पत्नियों को अपनी शक्ति दिखलाने के लिए उन्होंने अपने सारे बाहु से, हजार बाहु थे, नदी का प्रवाह रोक दिया। बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं, हाथों से रोक दिया। और जैसे ही नदी को रोका, नदी पीछे की ओर बढ़ने लगी, स्वाभाविक है। और पीछे रावण पूजा कर रहा था, और रावण जब शिव जी की पूजा करता था तो कोई बाधा नहीं आनी चाहिए उसमें। तब रावण पूजा कर रहा, अचानक देखा कि पानी बढ़ने लगा नदी का, बढ़ते 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 उसकी ओर आ रहा है। रावण ने अपने मंत्रियों की ओर देखा, क्या हो रहा है, देख कर आओ ये क्या है। तो रावण के मंत्री गए और उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति ने अपने हाथों से रोक दिया है। तो रावण को बड़ा क्रोध आया क्योंकि उसकी पूजा में बाधा हो गई। रावण चल दिए वहां पर युद्ध करने के लिए। अब ये क्रीड़ा कर रहे हैं नदी में, देखिए कार्तवीर्य अर्जुन की शक्ति, क्रीड़ा कर रहे हैं नदी में। रावण आया, त्रिलोकेश्वर रावण अपनी सारी सेना के साथ चुनौती दी कि तुम मुझसे युद्ध करो, नहीं तो मेरे दास बनो। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी पत्नियों को कहा, थोड़ा समय रुकना जरा यहां पे, मैं अभी आता हूं अभी इसको जरा हरा के आता हूं। वो कार्तवीर्य गए, युद्ध किया, रावण को बंदी बनाया, जाके जेल में डाल दिया, फिर आकर क्रीड़ा करने लगे। रावण जेल में, पहली बार किसी ने रावण को कैद कर दिया था और एक लॉक मार दिया, अपने एक संतरी खड़ा कर दिया सैनिक, बस रावण बाहर नहीं जाएगा। अब रावण, अब सोचिए क्या स्थिति हुई होगी रावण की, त्रिलोकेश्वर सारी शक्ति, कोई उसे हरा नहीं सका और वो एक जेल में बंद है, खोलने की शक्ति नहीं उसके अंदर। तो उस समय पुलत्स्य ऋषि, जो रावण के पूर्वज हैं, उनके वंश में रावण आते हैं। रावण ब्राह्मण हैं, आप सब जानते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण पिता हैं उनके। तो पुलत्स्य ऋषि आए कार्तवीर्य अर्जुन के पास। देखिए कितना अच्छा उस समय पर हमारी सभ्यता थी, इतना शक्तिशाली था वो कार्तवीर्य अर्जुन, इतना बड़ा राजा। रावण को जो बंदी बना ले कोई साधारण राजा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे पुलत्स्य ऋषि आए, अपने सिंहासन से उतरकर उसने उनके चरण धोए, प्रणाम किया, अपने सिंहासन पर बिठाया और कहा, बोलिए क्या आदेश है मेरे लिए, आप यहां चलकर आए, क्या बात है, क्या चाहते हैं। कितनी अच्छी सभ्यता थी हमारी, ये पहले हर एक के लिए होता था। अतिथि देवो भव, ये केवल आज एक वर्ड शब्द रह गया, आज तो देखने भी नहीं मिलता है ये लाइन। पहले तो कभी कभी लोगों के घरों में, दुकानों में कहीं लिखा रहता था, आजकल कहीं नहीं है अतिथि देवो भव। आजकल तो कुत्ते से सावधान लिख देते हैं वो लोग, ये वाक्य ज्यादा फैल गया। लेकिन पहले भारत की ये सभ्यता थी, कोई घर में आ जाए, हम लोगों ने खुद देखा है अपने बचपन में, जब हम लोग छोटे थे, घरों में कोई व्यक्ति आ जाए, बिना उसके कुछ आदर सत्कार किए, उसको कुछ खिलाए पिलाए, कभी बाहर नहीं भेजा जाता था। हम लोग बड़े आश्चर्य में होते थे जब किसी के घर जाते तो कोई पूछता था, आप पानी लेंगे क्या। यहाँ प्रथा वैसी हो गई है आधुनिक भारत में, आप किसी के घर जाइए तो लोग पूछते हैं, पानी लेंगे, कुछ खाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, बिना पूछे लाकर रखा जाता था, आदर सत्कार किया जाता था। ये बड़ा गलत भाव है किसी को पूछना, आप लेंगे क्या, थोड़ी कोई कुछ बोलेगा कि हाँ लें, ये तो आपको लाकर देना चाहिए। तो अतिथि देवो भव, ये तो चला ही गया है। तो रावण को बंदी बनाया, लेकिन पुलत्स्य ऋषि जब आए तो इतना स्वागत किया। और ये सब जगह हम देखते हैं, स्वयं कृष्ण करते थे, नारद मुनि कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, नारद मुनि कृष्ण के भक्त हैं, दास हैं, लेकिन जब नारद मुनि उनके महल में आते हैं उनसे मिलने के लिए, श्री कृष्ण उतर जाते हैं, वो अब उनके चरणों को धोते हैं नारद मुनि के। नारद मुनि को बड़ा बुरा लगता है, भगवान मेरे चरणों को धो रहे, क्या कर रहे हैं, नियम है, नियम का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए कार्तवीर्य अर्जुन ने भी नियम का पालन किया। पुलत्स्य ऋषि से पूछा, बताइए आपकी क्या इच्छा है, जो आपको चाहिए मैं दूंगा। पुलत्सर ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन केवल एक चीज मैं आपसे मांगता हूं, ये जो मेरा पौत्र है रावण, बहुत बहुत बदमाश है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है, छोड़ दो इसको। कार्तवीर्य अर्जुन ने एक शब्द नहीं कहा, तुरंत छोड़ दिया। उसको जिसने उसको चुनौती दी थी, वो रावण जो सारे त्रिलोक में हंगामा मचा रहा था, जिसको कार्तवीर्य अर्जुन चाहता तो कई दिनों तक बंद रखता बिना खाए पिए, एक शब्द ऋषि का केवल, उन्होंने केवल इतना कहा, उसको छोड़ दो, है मेरा वंशज, मैं चाहता हूं कि तुम उसको छोड़ दो, बस। कोई प्रश्न नहीं किया उसने, अरे आप ऋषि होके ऐसे पापी आतंकवादी को आप छुड़ाने के लिए आए हैं। आतंकवादी तो था, उससे बड़ा आतंकवादी और कौन हो सकता। आजकल तो छोटे मोटे आतंकवादी होते हैं, एक दो गोली मारकर मर जाते हैं। रावण त्रिलोकेश्वर, देवताओं को भी नचा दिया था उसने, इतना बड़ा आतंकवाद, यूनिवर्सल टेररिस्ट था वो सारे ब्रह्मांड का। हमारे के आतंकवादी एक एक देश में या एक छोटे से शहर के आतंकवादी होते हैं, रावण बड़ा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अरे आप ऐसे ऐसे आतंकवादी को छुड़ा रहे हैं, ऋषि के मुख की बात पूरी की उन्होंने। और किसने की? कार्तवीर्य अर्जुन, जो इतने बड़े राजा, इतने शक्तिशाली थे, हमारी सभ्यता थी। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, जब श्री कृष्ण और भीम मारने गए थे जरासंध को, तब उसने क्या किया था? रात को 12 बजे बात करेंगे, ये दोनों बिल्कुल बात नहीं करते हैं, भीम और अर्जुन, कृष्ण ने कहा था, ये दोनों ने उन्होंने व्रत लिया है ब्राह्मणों ने। उसने कहा ठीक है, और रात को 12 बजे आया मिलने के लिए। 12 बजे आकर उसने पूछा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो ये हमारी सभ्यता थी। तो रावण को छोड़ा, तो वो कार्तवीर्य अर्जुन, वैसे उसको बहुत घमंड था अपने बल का। तो एक दिन वो जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में आया, वहां उसने गाय देखी जो सब कुछ प्रदान कर सकती है। जमदाग्नि ऋषि ने सारी सेना को, कार्तवीर्य अर्जुन, उसकी सेना, उसके सेनापति, उसके सैनिक जितने थे, सबको भोजन कराया, और वो भी इतना बढ़िया भोजन, इतना बढ़िया फीस्ट, जो संडे को भी नहीं बनता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो कार्तवीर्य अर्जुन देखकर हैरान हो गए, ये ऋषि, ये जंगल में रहने वाला टूटी फूटी कुटिया में रहता है, इसने कहाँ से खिला दिया? उसने पूछा, आपके पास कहाँ से आया? तो उसने कहा, नहीं ये गाय है, ये सब प्रदान करती है। तो राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, गाय मेरे पास होनी चाहिए, आपके पास कैसे? जो भी अच्छी चीज़ है वो राजा के लिए है, चलो लेके जाएंगे। जमदाग्नि ने मना किया। वैसे जमदाग्नि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने विरोध नहीं किया, कि क्षत्रिय की तरह कार्य नहीं किया, तो उन्होंने मना किया, लेकिन जबरदस्ती वो लेके चले गए। अब परशुराम जी वापस आए, उस समय नहीं थे। अब जमदाग्नि तो ब्राह्मण थे, लेकिन परशुराम जी के अंदर क्षत्रिय भाव था, तो उन्होंने सुना, अच्छा कार्तवीर्य गाय ले गया है, अभी आता हूँ। जमदाग्नि बोल रहे, अरे अरे रहने दो, कोई बात नहीं, राजा है, उनका मान करना चाहिए, अपमान है, अरे वो मैं देख लूंगा, राजा है। परशुराम जी गए, युद्ध किया, कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला, खत्म, गाय वापस लेकर आ गए। कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्र थे, उनको बड़ा क्रोध आया कि हमारे पिता को मार दिया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि परशुराम जी इतने शक्तिशाली थे, और उस समय तो इतने क्रोध में थे कि ऐसे बताया गया, जब वो युद्ध कर रहे थे तो ऐसे कोई देख नहीं पा रहा था उनको कि वो हैं कहाँ, केवल लाशें गिर रही थी, बस ऐसा वर्णन है, केवल लाशें गिर रही थी, कोई देख नहीं रहा था कि हैं कहाँ परशुराम जी, कितनी स्पीड से मार रहे हैं किसी को नहीं पता। तो इन्होंने सोचा बदला लेना। एक समय जब परशुराम जी बाहर गए हुए थे, जमदाग्नि के आश्रम में आए कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र, और जमदाग्नि को मार डाला उन्होंने। और जमदाग्नि ब्राह्मण थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, तो उनको मार दिया, चले गए। और जब परशुराम जी आए, उनको पता चला, तो उन्होंने बहुत क्रोध किया, और उसके कारण उन्होंने 21 बार, उन्होंने कहा ये क्षत्रियों को बड़ा अहंकार हो गया है अपने बल का, बाहुबल का, तो इसीलिए उन्होंने सारे क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से समाप्त कर दिया। 21 बार कुछ नियम का पालन वो करते थे, कुछ क्षत्रिय रह जाते थे। जैसे उनका एक नियम था कि अगर किसी क्षत्रिय ने विवाह किया है तो एक साल तक वो उसको नहीं मारेंगे, एक साल बाद मारने जाते थे तब तक वो दूसरा विवाह कर लेता था, फिर एक साल नहीं मारेंगे। ऐसे एक राजा का नाम नारी कवच है। नारी कवच मतलब जिन्होंने नारी को कवच बना लिया उनको किसी ने नहीं मारा। क्यों? वो जानते थे परशुराम जी आने वाले हैं, एक विवाह और कर लेते थे। परशुराम जी आते थे मारने, तैयार हो? बोले नहीं नहीं अभी अभी विवाह। अच्छा ठीक है अगले साल आऊंगा। फिर तैयार हो? नहीं अभी अभी विवाह। ठीक है अगले साल आऊंगा। तो परशुराम जी ने 21 बार, कोई छोटा काम नहीं है, सारी पृथ्वी से क्षत्रियों को समाप्त कर दिया। समंत पंचक नामक स्थान में उन्होंने 5 कुंड बनाए बड़े बड़े, जिसमें रक्त को भरा इन क्षत्रियों के, और फिर अपने पिता को तर्पण किया, अपने श्राद्ध अर्पण किया उन्होंने क्रोध में आकर। तो ऐसे परशुराम जी की कथा वहां पर युधिष्ठिर ने सुनी कि कैसे परशुराम जी ने क्रोध किया, कार्तवीर्य अर्जुन को मारा। और रामचंद्र जी से भेंट की कथा तो वो पहले ही सुन चुके थे, पिछली बार हमने वर्णन किया था। तो सुन के फिर अगले दिन उन्होंने दर्शन किए परशुराम जी के, परशुराम जी से भेंट हुई और फिर उनसे आज्ञा लेकर वो आगे की ओर चले गए। आगे बहुत से स्थानों में गए और अलग अलग स्थानों में होते हुए फिर वो प्रभास क्षेत्र में आए। प्रभास क्षेत्र ये द्वारिका के पास स्थान है, ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने अपनी अंतिम लीला की थी, प्रभास क्षेत्र में। तो प्रभास क्षेत्र में आए, तो जब ये प्रभास क्षेत्र में आए तो सारे यादव उनसे मिलने के लिए आए। कृष्ण आए, बलराम जी आए, सात्यकी आए, सांब आए, जितने यदुवंशी थे सब आए। बड़े दुखी थे वो कृष्ण के साथ कि ये क्या हो गया पांडवों के साथ। और जब वो बैठे थे तो बलराम जी ने बोलना शुरू किया, बहुत सुंदर बात बलराम जी ने कही। बलराम जी विलाप करने लगे। उन्होंने कहा देखो ये युधिष्ठिर है जिसने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, और आज इसकी क्या स्थिति है, वल्कल वस्त्र धारण करके वन में बैठा हुआ है, और दूसरी ओर वो दुर्योधन है, वैसे उनका ही शिष्य था, दूसरी ओर वो दुर्योधन है जिसने कभी धर्म का पालन नहीं किया और वो आराम से राज्य कर रहा। तो श्री कृष्ण से पूछने लगे कि श्री कृष्ण ऐसा प्रतीत हो रहा है, लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि फिर धर्म करने की आवश्यकता क्या है, अगर अधर्म करके ही ये सारी चीजें मिलती हैं, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, राज्य मिलता है, और धर्म करने से वल्कल वस्त्र मिलते हैं, वन मिलता है, अपमान मिलता है, कंदमूल मिलते हैं, देखो भीम को उनको सबसे ज्यादा दुख भीम का हो रहा था। उन्होंने कहा भीम को देखो कितना दुबला हो गया है, खाने को ही नहीं मिलता है, जंगल के फल खा खा कर इसकी क्या हालत हो गई। ये सही में वर्णन है, महाभारत में श्लोक है। बलराम जी कहते देखो भीम की क्या हालत हो गई है वन के फल खा खा कर। और सही में भीम तो पतले हो ही गए होंगे, खाने को कभी मिलता था कभी नहीं, आप जानते हैं कि भीम क्या कितना खाते हैं, तो भीम के लिए तो बड़े कष्ट था। तो बलराम जी समझाने लगे कि ये क्या है, श्री कृष्ण से पूछने लगे ये कैसी स्थिति है, क्या करेगा धृतराष्ट्र। बलराम जी कहने लगे अरे जब मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों को मुख दिखाएगा तो क्या मुख दिखाएगा, वो क्या कहेगा कि क्या मैंने अपने भाइयों के बच्चों के साथ, अपने भाई के बच्चों के साथ न्याय किया, कैसे अपना मुंह दिखा पाएगा धृतराष्ट्र। और इतना ही नहीं, अगर ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म अगर युद्ध जीत भी जाएं तो लोगों के सामने कैसे आएंगे, क्या मुख लेकर आएंगे, ये अन्याय किया है इन्होंने। बलराम जी बहुत क्रोध में थे। तो ये बहुत सुंदर बात बलराम जी कहने लगे, बोले कि लोगों के मन में ये दुविधा है, आज इनको देखकर, पांडवों को देखकर जिन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं त्यागा, कभी धर्म का मार्ग नहीं त्यागा, लोगों के मन में दुविधा है धर्म का पालन करें या अधर्म का। धर्म के पालन से कष्ट मिलते हैं, अधर्म के पालन से आनंद मिलता है। दुर्योधन आनंद में है, युधिष्ठिर कष्ट में है। बलराम जी वैसे ये कह तो रहे थे लेकिन उनका कहने का तात्पर्य दूसरा था। वो ये बतलाना चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर रहता है तो कष्ट जरूर आएंगे, हो सकता है कष्ट आए, लेकिन अंततः विजय धर्म की होती। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है, धार्मिक है, जीवन में कष्ट नहीं देता दूसरों को, कभी गलत काम नहीं करता, धोखा नहीं देता, लेकिन वो व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ जाते हैं। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति पक्का धोखेबाज, कभी अच्छा कार्य करता ही नहीं है, धोखा देना, चोरी करना, गलत काम से, गलत तरीके से पैसा कमाना, और वो व्यक्ति बड़े आनंद में रहता है। तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आ जाता है, अरे क्या धर्म का पालन करें या नहीं करें? नहीं, धर्म का पालन हर अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि इस जगत के प्राकृत लाभ से ज्यादा आध्यात्मिक जगत का अप्राकृत लाभ महत्वपूर्ण है। अर्थात इस जगत में जो हमें दिखता है, दुर्योधन आनंद ले रहा है, वो व्यक्ति आनंद ले रहा है, ये तो क्षणिक है, समाप्त तो होने वाला है, और उस व्यक्ति को जो दंड मिलेगा वो हम देख नहीं रहे हैं। कुछ दिन पहले किसी ने हमसे प्रश्न किया कि एक फला फला लड़का है, पैदा होते उसको ये हो गया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? हमने कहा आप आज उसको देख रहे हैं, आज उस लड़के के कष्ट को देख रहे हैं, आपको बड़ी दया आ रही है, लेकिन जब यही लड़का पिछले जन्म में पाप कर रहा था, कष्ट दे रहा था लोगों को, तब आपने नहीं देखा था, इसलिए आपको दया नहीं आ रही है, दया आ रही है। तो एक उदाहरण हमने दिया, मान लीजिए आप लोग कभी पिक्चर देखने जाते हैं, आप जाइएगा नहीं, ऐसे ही उदाहरण है, सारे उदाहरण आप लोग गंभीरता से मत लीजिएगा। आपने कहा पिक्चर देखने जाते, हम सब पिक्चर देखने चले। एक पिक्चर कोई देखने जाता है, देर से पहुंचता है, आधी पिक्चर समाप्त हो गई, अब वो जाकर देखता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों को चॉकलेट खिला रहा है, प्रेम कर रहा है, अचानक दरवाजा खुलता है, धड़ाम, पुलिस आती है, अरेस्ट करके ले जाती है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे अरे कितना गलत किया पुलिस वालों ने, इतना अच्छा व्यक्ति था, कितने आराम से बच्चों के साथ खेल रहा था, इसको क्यों लोगों ने, क्योंकि आपने पहले पिक्चर नहीं देखी कि वो व्यक्ति वो जो चॉकलेट खिला रहा था वो किसी की हत्या करके लेकर आया था, वो जो गिफ्ट दे रहा था वो कहीं से चोरी करके लेकर आया था। तो हमने वो आधी पिक्चर नहीं देखी, अभी आधी देखी है, हम बोलते हैं कि अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति। तो हमने कहा यही बात है, हमने उसकी पहले की अभी पिक्चर नहीं देखी है, अभी आज की पिक्चर देख रहे हैं, आज वो क्या कर रहा है, अरे जो पहले किया उसका क्या होगा। तो यही चीज है, कभी कभी हमें लगता है कि व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है और दुख है उसको, और कोई व्यक्ति अधर्मी है, पापी है, बहुत आराम से पैसा भी कमा रहा है, लोग उसके पास लाइन लगा के खड़े हो जाते, हमारा ये काम कराइए, हमारा वो काम कराइए, तो लगता है कि यही ठीक है। और कलयुग में गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा बहुत जल्दी मिलती है, अच्छे मार्ग पर चलना कलयुग में बड़ा कठिन है। क्यों? कलयुग चाहता ही नहीं है, ये कलयुग का लक्षण है। जैसे एक बार कथा कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण था जो अपनी गायत्री बहुत समय पर किया करता था। गायत्री जानते हैं आप लोग, जो ब्राह्मण होते हैं उनके, उनको एक 25-50 पैसे का धागा पहनाया जाता है आजकल कलयुग में, और वो लोग संध्या वंदन करते हैं, तो गायत्री करते, 3 टाइम पे करना चाहिए, पता नहीं करते हैं या नहीं, लेकिन करना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण था एकदम पक्का सही टाइम पे गायत्री, गायत्री का समय होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब महामंत्र दिया तो उसके लिए कहा कोई काल नहीं है, नियमे न काला, कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, जब चाहेगा आप कर सकते हैं इसको, लेकिन गायत्री मंत्र का समय होता है, उसको संध्या कहते हैं। संध्या मतलब 3 संध्याएं आती हैं दिन में, एक जब रात्रि समाप्त होती है दिन शुरू होता है उसको संध्या कहते हैं, पहली संध्या, प्रथम संध्या, दूसरा जब दिन दोपहर होती है और शाम का समय शुरू होने वाला होता है तब वो संध्या, तीसरा जब शाम समाप्त होती है रात्रि प्रारंभ होने वाली होती है उसको तीसरी संध्या कहते हैं। तो इन तीनों समय पर गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए, प्राय अगर देखा जाए तो 6 बजे, 12 बजे और शाम को 6 बजे ऐसे गायत्री मंत्र कर। तो ब्राह्मण बहुत करता था एकदम समय पर, बिल्कुल चूकता नहीं था। एक समय ऐसे हुआ कि ब्राह्मण सो गया, 12 बजने वाले थे, कुछ ही समय बाकी था, ब्राह्मण सो रहा है, उठ ही नहीं रहा। तो एक व्यक्ति ने आके उठाया उसको, भाई साहब ब्राह्मण एकदम, क्या कौन है कौन, अरे टाइम देखो आपका गायत्री का टाइम। ओ भागा ब्राह्मण जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, आया फटाफट बैठकर गायत्री किया और बहुत प्रसन्न हो गया कि मैंने टाइम पे गायत्री की। फिर उसने घूम कर देखा कौन था जिसने मुझे उठाया, तो देखा एक व्यक्ति खड़ा है। तो बोले भाई कौन है आप? बोले मैं कली हूँ। कली? हाँ कलियुग। तो बोले कलियुग हो? बोले हाँ। तो आपने मुझे क्यों उठाया? नियम का पालन करने के लिए, आपको तो छोड़ देना चाहिए था ताकि अच्छा है नियम का पालन चला जाए, तो आपने मुझे क्यों उठाया? कलियुग ने कहा कि अगर मैं आपको नहीं उठाता आज, तो आपके मन में जो अहंकार है कि मैं कभी भी समय पर गायत्री करता हूँ, ये टूट जाता, आप नम्र हो जाते, और मैं नहीं चाहता कोई नम्र हो, मैं चाहता हूँ व्यक्ति अहंकारी रहे, तो इसलिए मैंने उठा दिया कि आपका अहंकार बना रहे कि हाँ मैंने कभी भी गायत्री बिना समय पर नहीं की है। उसने कहा ये कलियुग के लक्षण है। तो कलियुग में तो ये होगा ही, अहंकार होगा। तो इसीलिए हमें इस समय में ऐसे प्रभाव में नहीं आना है, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में अभी है, अगर अच्छा है तो वो भी भगवान की कृपा है, कुछ बुरा है तो हमारे कर्मों का फल है। हमने कुछ कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में जिसके लिए आज हमें ये फल मिल रहा है। देखिए कभी कभी व्यक्ति के जीवन में अचानक कुछ हो जाता है, सोचता नहीं है कुछ होगा, अचानक बुरा हो जाता, धन चला जाता है, कोई उसका प्रियजन मर जाता है, बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाता है, अपमान हो जाता है, कोई पद पर होता है वहां से नीचे गिर जाता है। हाँ ये हम पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे, वो तो रोज गिरते उठते रहते हैं। तो ऐसे होने पर ये क्यों माना जाता है कि जो अच्छा काम करता है उसको कष्ट होता है? उसको कष्ट इसलिए हो रहा है कि पूर्व जन्म में उसने कुछ बुरा किया होगा। आधी पिक्चर देखकर हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए बलराम जी ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे लोगों के मन में आ रहा। तो उस समय सात्यकी ने कहा कि अरे बलराम जी, विलाप करने से कुछ नहीं होगा, आप विलाप क्यों कर रहे हैं? हमारी सेना क्या कम है? और ये जो पांडव हैं ये अनाथ नहीं हैं, ये सनाथ हैं। जो अनाथ होते हैं वो लोग सहायता की याचना करते हैं, जो अनाथ होते हैं। जो सनाथ होते हैं उनके लिए वो याचना नहीं करते, वो लोग बोलते नहीं है कि हमें मदद चाहिए, उनके जो स्वामी हैं वो खुद मदद कर देते हैं। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है, खास करके भक्ति के विषय में उन्होंने कहा कि जो अनाथ होते हैं उनको मांगना पड़ता, उनको बोलना पड़ता मेरी रक्षा करो, किसी को जाकर कहना पड़ता है सहायता करो। जो सनाथ होते हैं, सात्यकी कहते हैं, उनको पूछना नहीं पड़ता, उनके स्वामी खुद जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। ये भगवान की भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं जाते हम सब अनाथ हैं। नाथ अनाथन काया जग में तुम बिन कौन सहारा। इस जग में जब तक श्री कृष्ण की शरण हम नहीं जाते हम सब अनाथ हैं। अनाथ मतलब हमारे स्वामी नहीं है। हाँ इस जगत में हमें माता पिता मिलते हैं चले जाते हैं, फिर दूसरे जीवन में मिलते हैं चले जाते हैं, असली स्वामी श्री कृष्ण है। तो जब हम श्री कृष्ण को अपना स्वामी बना लेते हैं, सनात हो जाते हैं, तो हमारी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, अरे कृष्ण बचाओ सहायता करो, वो रक्षा करते हैं। तो सात्यकी ने कहा कि ये तो सनात हैं, और फिर बलराम जी आप तो अकेले ही इन सारे कौरवों का नाश कर सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, भीम की भी आवश्यकता नहीं, अर्जुन की आवश्यकता नहीं है, नकुल सहदेव की आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता नहीं, आप तो अकेले ही, और आप ही क्यों, श्री कृष्ण अकेले कर सकते हैं, और फिर श्री कृष्ण ही क्यों, हम लोग क्या कम है? हम लोग ही मार सकते हैं उनको, सात्यकी ने कहा। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज ही, इंतजार नहीं, आज ही हम लोग युद्ध करेंगे, तैयार करते हैं सेना को, आप केवल आदेश दीजिए। तो बलराम जी को कह रहे थे कि क्यों आप विलाप कर रहे हैं? यानी बलराम जी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को विलाप करना अच्छा नहीं लगता, उनको तो युद्ध करना चाहिए। तो उस समय श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा कि सात्यकी जो तुम कह रहे हो सही है, मैं मानता हूं कि जो सनात होते हैं उनके स्वामी रक्षा करते हैं, लेकिन एक बात जान लो, ये जो युधिष्ठिर है ये कभी भी किसी दूसरे के द्वारा दूसरे के बाहुबल से जीती हुई भूमि को स्वीकार नहीं करेगा। ये इसका कर्तव्य, इसका धर्म है, ये सत्य के मार्ग पर चलता है। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम जाकर युद्ध करके जीत के भूमि उसको दे दोगे, ये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि युधिष्ठिर हर अवस्था में धर्म का पालन करते हैं। और युधिष्ठिर ही नहीं, अर्जुन करते हैं, भीम करते हैं, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब करती हैं हर अवस्था, वो विचलित नहीं होते। तीन चीजें भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण, बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं कि तीन अवस्थाओं में विचलित कभी नहीं होते, अपने धर्म को नहीं त्यागते, न कामनाओं से, न भय से और न लोभ से। दरअसल इस जगत में तीन चीजें हैं जिसके कारण हम धर्म को त्याग देते हैं, कामनाएं, भय और लोभ। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर इन तीनों चीजों के कारण कभी अपने धर्म को नहीं त्यागेंगे, फिर चाहे कामनाएं हो, भय हो या क्रोध, लोभ हो। तो हमारे हृदय में धर्म को त्यागने की भावना इन तीन कारणों से आती है, इसीलिए इन तीन कारणों को बहुत ध्यान से हमें दूर रखना चाहिए। तो पहली चीज है कामनाएं, जो हमें धर्म के पथ से विमुख कर देते हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कामनाएं हमें धर्म के पद से विमुख कर देती हैं। हमारा धर्म है, हम अपने अपने धर्म में स्थित हैं, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी हैं, अपने धर्म में स्थित हैं। कामनाएं, किसी को कामना हो जाती है भोग करने की, किसी को कामना हो जाती है धन कमाने की, किसी को कामना हो जाती है मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, धर्म को त्याग देता है व्यक्ति। कामनाएं जब ये तीव्र हो जाती हैं तो वासनाओं में बदल जाती है। किसी को धन की वासना है, किसी को काम की वासना है, किसी को मान पद की वासना है। तो जब ये जो इच्छाएं हैं, ये कामनाएं हैं, बड़ी तीव्र हो जाती हैं, वासना का रूप ले लेती हैं। इसीलिए आचार्य गाते हैं कि कब मेरे हृदय से वासनाएं दूर होंगी, कब मैं वृंदावन को देख सकूंगा। तो ये वासना में जब बदल जाता है तो व्यक्ति अपने धर्म को त्याग देता है। तो उसके लिए एक ही धर्म रह जाता है, आनंद लेना, धन कमाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये न केन प्रकारेण। नारद मुनि कहते हैं कि ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत। हमें किसी न किसी तरह मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति आकांक्षाओं से भर जाता है, वासनाओं से भर जाता है, तो फिर वो ये न केन प्रकारेण, मतलब किसी न किसी तरह साम दाम दंड भेद वो अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, और इसीलिए धर्म को त्याग देता है। क्योंकि धर्म कामनाओं पर आधारित नहीं है, कामनाएं व्यक्ति को धर्म से विचलित करती हैं, कामनाएं प्रेरित करती हैं व्यक्ति को धर्म त्यागने के लिए, क्योंकि धर्म कामनाओं को वश में करना सिखलाता है। सच्चा धर्म हमें यह सिखलाता है कि अपनी कामनाओं को वश में करें, कृष्ण की कामनाओं के लिए कार्य करें। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। तो इसीलिए सच्चा धर्म क्या है, जो हमें इस भौतिक जगत की तुच्छ कामनाओं से दूर ले जाए, वो सच्चा धर्म है। और जब हम उस धर्म की ओर देखते हैं और हमारी कामनाएं तीव्र होती हैं, हम धर्म को त्याग देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर ऐसा नहीं, वो किसी भी कामना के लिए अपने धर्म को नहीं त्यागेगा, और हमें उसका अनुगमन करना चाहिए। हम सबको ये सीखना चाहिए आज कि अगर हमें धर्म के पालन में कोई कामनाएं हमारी बाधाएं आए, कामनाओं को त्याग दीजिए, धर्म को मत त्यागिए, इच्छाओं को त्याग दीजिए, धर्म को मत त्यागिए, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। कौन सा धर्म, कैतब धर्म नहीं, झूठा धर्म नहीं, वो धर्म नहीं जो इस जगत में अच्छी तरह रहने का सिखाए, नहीं, सच्चा धर्म जो इस जगत के परे जाने की प्रेरणा दे। ऐसा धर्म जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, ऐसा धर्म जो हमें दिखलाए कि हम कितने दुख की स्थिति में हैं, दुखालयम अशाश्वतम, निकलो यहां से। तो सच्चा धर्म वो है जो हमें शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। सच्चा धर्म वो है जो हमें इस बंधन से मुक्त करता है। तो कामनाओं को त्याग कर धर्म को संभालना चाहिए। दूसरा, भय। व्यक्ति धर्म का त्याग कर देता है भय से। किस चीज का भय? अपने प्राण बचाने का भय। जब प्राण की बात आती है, प्राण बचाने के लिए व्यक्ति कोई भी चीज, कोई भी धर्म के सिद्धांत को तोड़ने के लिए तैयार है, अगर उससे मेरे प्राण बचते हैं। भय है, मृत्यु का भय है, या और भी कोई भय हो सकते हैं व्यक्ति को। तो ये मृत्यु का भय है, ये हमें धर्म तोड़ने के लिए प्रेरित कर देता है। लेकिन अगर व्यक्ति सही ज्ञान में है कि मृत्यु क्या है, क्या शरीर की मृत्यु होती है या आत्मा की, सही ज्ञान क्या है, न आत्मा मरती है न शरीर, आत्मा तो अमर है, अजन्मा है, और शरीर सदैव मृत है। तो मृत्यु क्या है, भय किसका, किस चीज का भय होता है व्यक्ति को? शरीर छोड़ने का? शरीर तो वैसे भी मृत है, आज भी मृत है यह शरीर, केवल आत्मा की उपस्थिति से ये बोल रहा है, ये चल रहा है। फिर मृत्यु किसकी है? कोई मृत्यु नहीं होती, केवल आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, बस। हम उसी को मृत्यु कह देते हैं। तो ये भय से निकलने के लिए ज्ञान चाहिए। तो इसीलिए धर्म को नहीं त्यागना है, भय को त्यागना है। वो भय जो धर्म से परे ले जाए, ऐसे भय को त्याग दीजिए। और लोभ, जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करने का लोभ, इस लोभ को त्यागना चाहिए। तो श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं कि युधिष्ठिर कभी भी धर्म को नहीं त्यागता, इन तीन अवस्थाओं में भी वो धर्म को नहीं त्यागेगा। और उस समय फिर युधिष्ठिर बोलने लगे, युधिष्ठिर ने सात्यकी से कहा, आप जो कह रहे हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं ये सुनकर कि आप हमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध अभी नहीं। युधिष्ठिर अंत तक युद्ध नहीं चाहते थे। युधिष्ठिर बस सोच रहे थे कि अंत में भी चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इसलिए नहीं कि कायर थे, इसलिए नहीं कि डरपोक थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि साधु हृदय के थे, भक्त थे। और वो सोच रहे थे कि क्यों युद्ध करना है, थोड़े बहुत में संतुष्ट रहेंगे। और श्री कृष्ण ने तो प्रयास भी किया। श्री कृष्ण गए, दुर्योधन से कहा उनका राज्य दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा, आधा दे दो, नहीं दूंगा, 5 गांव दे दो बस। दुर्योधन से इतना ही कहा, कुछ मत दो, 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं, बस एक एक गांव दे दो उनको, क्षत्रिय हैं, अरे उनको राज्य करना है, कहां राज्य करेंगे, केवल 5 गांव दे दो उनको, मैं वचन देता हूं एक भी पांडव तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, कि पूरा राज्य लेकर केवल 5 गांव दिए। देखिए कितनी अच्छी बात थी, एक व्यापारी की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रपोजल था, है ना, दुर्योधन के लिए। सारी भूपृथ्वी मिल रही थी, 5 गांव देने थे, दे देता कहीं पे इधर उधर छोटे मोटे गांव, लेकिन दुर्योधन ने क्यों नहीं दी? दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा मैं। क्योंकि उसको पता था 5 गांव दूंगा तो ये लोग फिर से राजसूय यज्ञ करके सारी पृथ्वी ले लेंगे, ये बड़े शक्तिशाली है, तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं। तो भगवान प्रयास किया, तो युधिष्ठिर अंत तक नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, तो युधिष्ठिर ने भी प्रयास किया, कि उस समय कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी हम लोग वनवास में रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब होगा। वो भी जानते थे कि आगे होकर युद्ध होना है, लेकिन जब तक हो सके उसको टालना चाहते थे। और इस समय उन्होंने प्रार्थना की कि आप सब अब द्वारिका जाइए, इस वन में आपके लिए ज्यादा रहना ठीक नहीं, आप सब राजा हैं क्षत्रिय हैं, हम लोगों को वनवास है, आपको थोड़ी वनवास है, आप सब जाइए द्वारिका में। तो ऐसे उन्होंने द्वारिका में भेज दिया और फिर आगे की ओर यात्रा चलने लगे। आगे और बहुत सारी उन्होंने कथाएं सुनी, संक्षेप में एक दो कथाएं जैसे च्यवन मुनि और सुकन्या की कथा उन्होंने सुनी। उस स्थान पर गए जहाँ च्यवन मुनि ने यज्ञ किया था, जहाँ उनका सुकन्या से विवाह हुआ था, तो वहाँ पर लोमश ऋषि ने उनको बहुत सुंदर एक कथा सुनाई। च्यवन ऋषि की कथा बड़ी अच्छी है। च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। च्यवन नाम सुना आपने? च्यवन, च्यवन प्राश खाते हैं ना आप लोग, ये च्यवन ऋषि से आता। तो मतलब उन्होंने नहीं, अभी तो डाबर कंपनी बनाती है, लेकिन तो च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, बहुत कड़ी तपस्या। इतनी कड़ी तपस्या उन्होंने की कि उनके सारे शरीर के आसपास चींटियां चींटियां उन्होंने एक वो बना दिया, अपना घर बना दिया, दिखाई नहीं। पेड़ पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ से ऐसे चिपक गया, दूर से दिखने से लगता ही नहीं था कोई बैठा है, पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे वो तपस्या में मग्न थे। एक दिन राजा शर्यति की पुत्री, राजा और राजा की पुत्री वहां पर आए, बहुत सुंदर पुत्री थी सुकन्या, और उसने देखा कि ऐसे यहाँ कुछ बना हुआ है, और उसने देखा कि जो उनकी आंखें थीं वो लाल लाल थीं, तो उसने देखा कि दो छेद हैं केवल और उनसे कुछ चमक रहा है, कोई लाइट निकल रही है। तो उसने थोड़ा ही हंसी मजाक में एक कांटा लिया बड़ा सा और ऐसे अंदर मार दिया, ऐसे देखने के लिए क्या है ये लाइट, टक ऐसे मारा। उनकी आंख थी ढाड़ अंदर सीधा, वो तो तपस्या कर रहे थे, तो बहुत क्रोध आ गया उनको, तो वो दंड देना चाहते थे। दंड क्या दें? उन्होंने सारी सेना को दंड दे दिया। और क्या दंड दिया सारी सेना को अपनी तपस्या के बल से च्यवन ऋषि ने, कि सारी सेना के जो शरीर में जितनी भी चीजें थी वो शरीर में ही रह गई, बाहर के सारे द्वार बंद हो गए, तो कुछ वो त्याग नहीं सके। शरीर में जो भी मल मूत्र इत्यादि सब शरीर में ही रह गया। बीमार होने लगे अचानक सब, पूरी सेना, ये क्या हो गया, हलबली मच गई। राजा समझ गए, राजा ने कहा यहाँ इस क्षेत्र में मैंने सुना एक च्यवन ऋषि नाम के ऋषि तपस्या करते हैं, जरूर हमने अपराध किया है। तो ढूंढना शुरू किया, किसी ने कुछ नहीं, तो पुत्री ने कहा कि हाँ मैंने ऐसे ऋषि का तो नहीं, लेकिन वहाँ कुछ मैंने ऐसे कोई लाइट सी देखी थी, मैंने उसमें ऐसे मार दिया, पता नहीं कुछ होगा। राजा ने कहा दिखाओ, तो गए राजा ने हटा के देखा, च्यवन ऋषि दंडवत प्रणाम, क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा क्षमा एक शर्त पे करूंगा, क्या? बोले अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर लो। राजा ने कहा यस तथास्तु, जल्दी बाकी सारी सेना को ठीक कीजिए। तो सेना ठीक हो गई और च्यवन ऋषि की बहुत अच्छी सेवा सुकन्या ने की। तो एक समय अश्विनी कुमार वहां पर आए, और च्यवन ऋषि बड़े बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े शरीर ऐसा ही जर्जर, और उनकी सेवा कर रही थी सुकन्या, बहुत सुंदर थी, लेकिन क्योंकि विवाह किया पिता ने तो उसने बड़े हृदय से उनकी सेवा की। तो ये दोनों आए, ये दोनों एकदम प्रकाशमान राज देवता अश्विनी कुमार, उन्होंने इससे कहा रहे तुम इतनी सुंदर हो, यहाँ क्या ये जंगल में गंदे से कपड़े पहनकर घूम रही हो, तुम्हें तो बहुत अच्छे आभूषण पहनने चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, तुम्हारा सौंदर्य बढ़ जाएगा, तुम एक काम करो हम में से किसी से विवाह कर लो। उसने कहा मेरा विवाह तो पहले से हो चुका है, मेरे पति हैं च्यवन ऋषि, मैं तो उनको ही अपना पति मानती हूँ। कहा वो बूढ़ा आदमी, तुम्हारे पिता ने कैसे विवाह कर दिया इनसे, इतना बूढ़ा है और तुम इतने युवावस्था में हो, अभी भी सोच लो। तो उसने कहा कोई सोचने की बात नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, वैसे परीक्षा ले रहे थे, वो चाहते नहीं थे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम तुम्हारे पति को भी युवा बना देते हैं, हम लोग वैद्य हैं देवताओं के, हमारे अंदर शक्ति, हम तुम्हारे पति को भी युवा बना देते हैं, फिर तीनों में से जिसको चुनना चुन लेना। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो तो चाहती थी अपने पति को ही चुनना, फिर भी कहा। उसने अपने पति से जाके कहा, च्यवन ऋषि तैयार हो गए। तो तीनों ने एक सरोवर में गए, तीनों जब बाहर आए तो तीनों एकदम एक समान, उनके शरीर से तेज निकल रहा है, तीनों की शक्ल एक जैसी, एकदम हैरान। अब उन्होंने कहा हम तीनों में से जिसको भी तुम्हें चुनना चुन लो, वो तुम्हारा पति होगा। अब बड़ा बड़ी मुश्किल हो गई ना सुकन्या के लिए, उनमें से दो थे अश्विनी कुमार और एक उसका पति, अब तीनों कौन है, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन उसकी क्योंकि सतीत्व की शक्ति थी तो उसने अपने पति को ही चुना। और वैसे भी ये परीक्षा ले रहे थे अश्विनी कुमार, कोई चाहते तो नहीं थे विवाह करना, तो उस समय उन्होंने आशीर्वाद दिया। और च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को कहा कि आपको भी मैं कुछ प्रदान करूँगा। तब तक अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमरस पीने की अनुमति नहीं थी। उस दिन से च्यवन ऋषि के कहने से इंद्र से थोड़ा झगड़ा हुआ था बाद में च्यवन ऋषि का इस बात पे, लेकिन उनको दिया गया। तो ऐसी कथा भी वहाँ उन्होंने सुनी च्यवन ऋषि और सुकन्या की। और उसके बाद आगे वो लोग चले गए गंधमादन पर्वत की ओर, बद्रिकाश्रम इत्यादि आगे, अब गंधमादन पर्वत, और वहाँ पर वो रहने लगे। और वहाँ बहुत सुंदर एक लीला हुई जो बड़ी महत्वपूर्ण लीला है, बहुत सा ज्ञान देती है। और ये लीला है भीम और हनुमान जी की भेंट, वहाँ पर हुई थी गंधमादन पर्वत पर। और ये तो हम कथा सब जानते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन एक संवाद हुआ हनुमान जी के बीच और भीम के बीच, वो संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल जब हनुमान जी वहां पर लेते थे, वो रोकना चाहते थे क्योंकि भीम जा रहे थे आगे पुष्प लेने के लिए, सौगंधी का पुष्प कमल लेना है आगे आगे, तो रोकना चाहते थे इसलिए लेट गए रास्ते में। और हनुमान जी को देखकर ये आए, और भीम को तो बहुत अहंकार था, तो भीम ने बोला हटो सामने से, अरे मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, क्यों मुझे ऐसे तंग कर रहे हो, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। बोले हट जाओ, अरे मेरे ऊपर से कूद जाओ, चले जाओ मेरे ऊपर से लांग जाओ, भीम को कहा। भीम ने कहा नहीं नहीं, हर एक के हृदय में भगवान रहते हैं, इसलिए लांघना नहीं चाहिए, एक नियम है शास्त्रों का, हमें किसी को लांघना नहीं चाहिए शरीर को, अगर कोई लेटा है तो उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। क्यों? भीम ने कहा हर एक के हृदय में भगवान है और हम भगवान को लांघ नहीं सकते। तो भीम ने कहा मैं नहीं लांघूंगा, तुम हट जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं हटूंगा। तो उस समय उन्होंने कहा एक बात कि कौन हो तुम, ऐसे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भीम हूँ मैं, अपना वर्णन किया। और वर्णन करते करते अपनी शक्ति का वर्णन करते हुए कहने लगे कि मेरी शक्ति है, मेरे बड़े भाई हैं हनुमान जी, उनकी तरह मेरी शक्ति है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा कौन है हनुमान, ये हनुमान नाम नहीं सुना मैंने कभी। बोले अरे तुम जानते नहीं हो, इतने महान थे ये वो, हनुमान जी को ही सुना रहे कौन हनुमान जी। तो ये लीला का वर्णन अगले सोमवार को करेंगे, बहुत सुंदर लीला है। हनुमान जी का बड़ा संवाद हुआ, और फिर हनुमान जी ने जब उनको दर्शन दिए, बताया कि मैं हनुमान हूँ, उसके बाद भीम ने कई प्रश्न किए उनसे, वो बहुत सुंदर संवाद है, बड़ा ज्ञान प्रदान करने वाला। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले सोमवार को करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं हाथ ऊपर कीजिए तो माइक आएगा, माइक दीजिए। हरे कृष्णा। थोड़ा पास से बोलिए, सुनाई नहीं दे। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा कभी कभी आवश्यक होती है। उन्होंने ये आदेश अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मान अपमान के लिए नहीं दिया था, उन्होंने ये आदेश दिया था धर्म की स्थापना के लिए। सो हिंसा वैसे तो कोई भक्त नहीं करते हैं, ऋषि मुनि क्या कोई भक्त नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए, जैसे महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, अर्जुन ने जो इतने महान भक्त हैं इतनी हिंसा की, तो कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता होती है। जैसे उनकी पत्नी ने एक अधर्म का कार्य किया था, ये वो समय था जब मन में किया हुआ पाप भी पाप माना जाता था, कलयुग में वो नहीं है, कलयुग में आप मन में पाप, कलयुग में तो आप सीधे भी पाप कर लो, लोग आजकल पाप नहीं कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मन में माना किया हुआ पाप ज़्यादा पाप नहीं माना जाता है कलयुग में। लेकिन ये वो समय था जब मन में किया हुआ पाप भी पाप माना जाता था। तो जिसने पाप किया है, जमदाग्नि ऋषि एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि अगर वो उनकी खुद की पत्नी भी है तो भी उसको दंड मिलना चाहिए। तो इस दृष्टि से, क्रोध से नहीं, धर्म की स्थापना, नियमों को बनाए रखना और एक आदर्श प्रस्तुत करना, ताकि आगे आने वाले लोग ये नहीं कहें कि जमदाग्नि ने अपनी पत्नी को दंड नहीं दिया, तो इस स्थापित करने के लिए उन्होंने, ठीक है। हाँ, ऋषियों को क्रोध आना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक तपस्या की पूर्णता प्राप्त नहीं होती है तब तक ये जो दोष है हृदय से वो जाते नहीं है। सुन लीजिए पूरा उत्तर। जैसे उदाहरण विश्वामित्र मुनि का, विश्वामित्र मुनि ने इतनी तपस्या की लेकिन फिर भी रंभा के ऊपर क्रोध कर दिया। तो क्रोध, ये कई कई ऋषि मुनि तो हैं ही क्रोधित, दुर्वासा मुनि तो प्रसिद्ध हैं क्रोध करने के लिए। तो इसीलिए जब तक हृदय से संपूर्ण रूप से भौतिक इच्छाएं जाती नहीं हैं, जब तक हृदय पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं चला जाता हृदय से, तब तक ये क्रोध काम इत्यादि बने रहते हैं। तो इसीलिए कभी कभी इन ऋषियों को भी क्रोध आ जाता है, ठीक है।
हाँ जी,
पहली चीज जानबूझ के नहीं करना चाहिए, लांगना नहीं चाहिए। अनजाने में हाँ हम लोग बहुत पाप करते हैं, लांगते ही क्या, हम लोग तो मार भी देते हैं चलते हुए, हम लोग कई जीवों को दबा देते हैं अपने पाँव के नीचे, जो माइक्रोब्स हैं, सांस लेते हुए हम लोग माइक्रोब्स को अंदर ले लेते हैं, वो मर जाते हैं। पानी गर्म करते हैं तो उसमें माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो इनको पंच सून, पांच प्रकार के ये पाप कहे गए हैं शास्त्रों में, और उसके लिए शास्त्रों में विधान भी दिया गया। तो पाप निश्चित लगता है, लेकिन क्योंकि ये इतने बड़े नहीं हैं इन द सेंस कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको सांस तो लेनी ही है, आप क्या कर सकते हो, माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं, और या फिर आपको चलना है, पानी गर्म करना है, झाड़ू लगाना है, इन सब में कीड़े वगैरह मारे जाते हैं, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पाप लगता है। और उसके लिए शास्त्रों में विधान है कि कुछ तरह के यज्ञ या कुछ तरह के कार्य आप करें तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। जैसे बताया गया कि किसी अतिथि की सेवा करना, ये एक प्रकार का यज्ञ है जिससे हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे कई, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान का नाम लेना, तो ये चीज़ें हम लोग करके फिर उनसे मुक्त होते हैं, लेकिन निश्चित पाप लगता ही है।
धन्यवाद।
बाकी और भी लोग होंगे, किसी और का प्रश्न है कोई, हाँ इनको दीजिए, आपके पास फिर आएंगे समय होगा तो। हनुमान ने भीम को, हाँ हनुमान जी कृष्ण से क्यों नहीं मिले, हनुमान जी कृष्ण से कभी दूर ही नहीं होते, वो तो सदैव उनको राम के रूप में देखते रहते हैं। हनुमान जी कृष्ण से इसलिए नहीं मिले क्योंकि उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है श्री रामचंद्र जी से है, वो जानते हैं कि कृष्ण वही हैं, वही राम हैं, लेकिन फिर भी उनका लगाव राम के रूप से है, इसीलिए उनकी भक्ति करते रहते हैं। लेकिन वो कृष्ण से मिलने गए थे, जब युद्ध हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार थे, तो किस लिए सवार थे रथ पर, कृष्ण की सेवा के लिए, वो कृष्ण के दर्शन कर रहे थे, तो गए थे मिलने, लेकिन क्योंकि उनका जो उनके जो आराध्य देव हैं रामचंद्र जी हैं, इसलिए वो उसमें प्रसन्न रहते हैं। और रामचंद्र जी से उन्होंने वरदान मांगा है, हनुमान जी आज भी हैं। उसका कारण क्या है, वो गए क्यों नहीं हनुमान जी वापस जब रामचंद्र जी गए? उस समय उन्होंने एक वरदान मांगा था कि जब तक आपकी कथा यहाँ पर रहे, जब तक आपका नाम रहे, तब तक मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। कि हनुमान जी यहाँ पर हैं, इसलिए उनके आराध्य देव राम हैं, तो वो कृष्ण से मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वही कृष्ण हैं, वही राम हैं। इसीलिए जब आवश्यकता पड़ी तो अर्जुन के रथ पर सवार हुए वो। यस
जी, आपने कहा था कि हमारे जितने भी दुख हैं या विपत्तियां हैं, उन सब का कारण हमारे कर्म है। और हमारे पास जो भी सुख संपत्ति है, सुविधा है, उसके लिए भगवान जिम्मेदार है, भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। तो उसके लिए भी आप ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे कर्मों के द्वारा जिन्हें प्राप्त हुआ है, भगवान का उसमें रोल कैसे आ गया?
हाँ, निश्चित कह सकते हैं आप कि अच्छा बुरा सब हमें हमारे कर्मों से मिलता है। लेकिन एक जो भक्त होता है वो अच्छी चीज़ों का श्रेय भगवान को देता है, बुरी चीज़ों का दोष अपने ऊपर लेता है। ये भगवान के भक्त के लक्षण हैं कि भले उसके कर्मों से मिला है, लेकिन वो श्रेय भगवान को देता है कि भले मेरे कर्म हैं, लेकिन मेरे कर्म करवाने वाले भी आप हैं। तो अच्छी चीज़ों का श्रेय भगवान को देता है, और अगर कुछ गलती हो जाए, बुरी चीज़ हो जाए, तो दोष अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन हाँ, एक दृष्टि से कह सकते हैं कि इस जगत के जो अच्छी बुरी चीज़ें मिलती हैं वो कर्मों से हैं, लेकिन भक्ति ये हमारे कर्मों से नहीं मिलती है, ये भगवान की कृपा से मिलती है। जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भागवत सुनते हैं, ये कोई हमारे अच्छे कर्मों से नहीं है, क्योंकि ये पाप पुण्य के परे है। पाप और पुण्य से आपको थोड़ी चीज़ें, जैसे इस जगत का ऐश्वर्य, इस जगत में धन मिल सकता है, सुंदरता मिल सकती है, कोई पद मिल सकता है, ये पुण्य करके मिलता है। पाप करके तो आप जानते ही हैं बहुत कुछ मिलता है। लेकिन भक्ति जो है हमें, ये पाप पुण्य के परे है। तो इसलिए एक भक्त जो होता है वो सारा श्रेय भगवान को देता है, ये भक्त की भावना। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के, कोई जिज्ञासा मन में? ठीक है, तो अभी भगवान के दर्शन करेंगे।